का था, रूह वही रूप नया।
रक्तमंडल के पिछले भाग में आपने सुना कि पंडित गोपाल शंकर एक बूढ़े का भेष धरकर किले के अंदर से जरूरी मशीनें, सामान, जहाज, बेतार के तार के यंत्र सब कुछ लेकर चकमा हो गए। इधर नगेंद्र नरसिंह ने रक्तमंडल का सेनापतित्व स्वीकार किया और युद्ध की तैयारी में लग गए। वापस आने के बाद गोपाल शंकर की मुलाकात वाहिद अली खां और मैकडोनल्ड स्लाई से हुई, जो उस प्रांत के लाट साहब थे। मृत्यु किरण देखने और उसे जानने के बाद गोपाल शंकर और मैकडोनल्ड स्लाई में क्या बातचीत हुई, जानने के लिए सुनिए अगला भाग। गोपाल शंकर ने कहा, इन नीचे पड़ी राखों से पता लगेगा कि करीब करीब संसार की सभी चीजें इस किरण में पड़कर भस्म हो जाती हैं। मैंने लोहा, बालू, अब्रक सब पर इनका प्रयोग किया, सभी भस्म हो गए। न जाने इन किरणों में कितनी शक्ति है। तो लाट साहब बोले, अगर ऐसा है तो ये सचमुच बहुत भयानक चीज है। अभी तक इतनी हीट है जो मैंने कभी भी नहीं देखी। एंड जो एस्पेस्ट और अब्रक को जला दे, पर मृत्यु किरणों ने तो वो भी कर दिखाया। बट वन थिंग आई कॉन्ट अंडरस्टैंड, हाउ वुड वी यूज दीज रेज इन अ वॉर। गोपाल शंकर ने कहा, इस मशीन के साथ जो कागजात मैं लाया हूं उनसे मालूम होता है कि इन मशीनों के तीन भाग होते हैं। बदकिस्मती से मैं सिर्फ पहले भाग का ही मॉडल ला सका। ये अंश केवल मृत्यु किरणों को पैदा करता है, दूसरी मशीन इन्हें इकट्ठा करके किसी विशेष तरह के बर्तनों में संग्रह करती है, और तीसरी मशीन उन किरणों को आपकी मर्जी से जैसा चाहे वैसा परिणाम दे सकती है। वही सबसे भयानक है, उससे एक ही जगह बैठकर सैकड़ों कोस की चीजें नष्ट की जा सकती हैं। और आपका कहना है कि ये रेज के यूज से उन लोगों ने बम भी बना डाले हैं। जी हाँ लट साहब, ये बात मैंने खास उन भयानक चार के मुखियों के मुंह से सुनी है, जिसका इरादा है कि इस तरह के कितने ही बम तैयार करके दूर दूर मुल्कों के हिस्से में भेजे जाएं। उनके इस ख्याल से मेरा कलेजा दहल उठता है, क्योंकि दुनिया की कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती। So you mean to say, ऐसा बम मुल्क के सब तरफ जाने वाला है? Are you sure about it? जी हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। छप छो इस किले और ये मशीन का जो भी हो सके जल्द से जल्द नामो निशा मिटा दो। क्या आप इसे इतनी मामूली बात समझते हैं? अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो इस समय उस किले के चारों तरफ 100-100 कोस पर उनका एक छत्र साम्राज्य है, जिसके अंदर वो जो चाहें वैसा करें। एक परिंदे की भी मजाल नहीं कि बिना उनकी मर्जी के वहां जा सके। क्या भूल गए कि हमारा लश्कर किले से 50-60 मील की दूरी पर था और उसे उन्होंने नष्ट कर दिया था। वहां उन लोगों ने जो यंत्र खड़े किए हैं, ये इस मॉडल से सैकड़ों गुने बड़े और भयानक हैं, और उनका मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। वे चाहें तो पहाड़ों तक के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं।
क्या हम आसमान से बम गिराकर उनको खत्म नहीं कर सकते?
हरगिज नहीं। एक तो जिस जगह उन्होंने इस मशीन को खड़ा किया है वो जमीन की सतह से 5 फुट से भी नीचे है, और आपके बड़े से बड़े बम उतना नीचे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरे, आपके किसी हवाई जहाज की ये ताव ही नहीं कि उनके किले के ऊपर बिना उनकी मर्जी से उड़ सके। मृत्यु किरण की एक हल्की सी लपट हवाई जहाज को इस तरह जला देगी कि जमीन पर गिरने के बाद कुछ भी ना बचेगा।
ओह माय गॉड, ये तो आप बहुत विचित्र बात कर रहे हैं। क्या आपका मतलब है कि ये शैतान इतने मजबूत हो गए हैं कि गवर्नमेंट इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती?
लाट साहब के चेहरे पर व्याकुलता और क्रोध के साथ अविश्वास भी झलक मार रहा था। जिससे उनके दिल के भाव का पता लगता था। वास्तव में यह अनुमान करना भी कि थोड़े से आदमियों का एक दल अपने सामने सरकार की पूरी ताकत को बेकार कर देगा असंभव सा मालूम होता था। पर चतुर और दूरदर्शी वैज्ञानिक गोपाल शंकर मृत्यु किरणों की शक्ति को जान गए थे और समझ गए थे कि उनका मुकाबला करना हंसी खेल नहीं है। इसलिए लाट साहब की बात के जवाब में उन्होंने शांति और गंभीरता के साथ सिर्फ इतना ही कहा, बेशक आपकी सरकार का सेना बल उन्हें पराजित नहीं कर सकता। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। लाट साहब की सूरत से जान पड़ता था कि वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं, कि गोपाल शंकर को पागल समझे या अपने को। आखिर कुछ देर बाद उन्होंने कहा, तब क्या किसी तरह भी ये दुष्ट हराए नहीं जा सकते मिस्टर गोपाल शंकर? गोपाल शंकर चुप रहे। मालूम पड़ता था मानो वो कोई बड़ी गंभीर बात सोच रहे हैं। लाट साहब उनका मुंह इस तरह देख रहे थे जैसे कोई रोगी किसी डॉक्टर का मुंह देखता है। अंत में कुछ देर बाद गोपाल शंकर ने कहा, विज्ञान का जवाब विज्ञान ही दे सकता है। मृत्यु किरण को मृत्यु किरण ही दबा सकती है। अगर आप लोग कोशिश करके इसी मॉडल के आधार पर मृत्यु किरण पैदा करने वाले कुछ बहुत ही बड़े और शक्तिशाली यंत्र बना सकें, तो संभव है कि दुष्टों को बस में किया जा सकता है। जब तक ये यंत्र ना बन जाएं, तब तक इन लोगों की कार्यवाही को रोकना आपके जासूस विभाग का काम होना चाहिए, और उतने समय तक इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि उस किले में नया सामान, मशीन, रसद और सिपाही ना पहुंच सके। ये आपकी फौज का काम होना चाहिए जो उस किले की मृत्यु किरणों को मारकर बाहर बाहर रहती हुई ऐसे घेरा डाले कि किले में ना तो कोई जा सके और ना वहां से कोई आ सके। इस काम में आपके हवाई जहाज भी बहुत मदद दे सकते हैं। हाँ, ये तो आपका कहना ठीक है, मगर आपने खुद ही कहा है कि मृत्यु किरण से काम लेने के लिए तीन प्रकार के यंत्र चाहिए होंगे, जिनमें से केवल एक ही मॉडल आपके पास है। बाकी दोनों मशीनों के बिना कैसे काम चलेगा? उन्हें यदि संभव हो तो उन कागजों की मदद से बनाना पड़ेगा जिन्हें मैं किले से लेकर आया हूं। तो क्या उसमें पूरा हाल दिया है? खैर, मैंने अभी सभी को तो नहीं पढ़ा है, मगर सरसरी निगाह से देखा जरूर है, जिससे उम्मीद होती है कि उनकी मदद से बाकी दोनों मशीनें शायद बन सकें। हालांकि मैं मैकेनिक या इंजीनियर तो नहीं हूं, लेकिन इस विषय में सबसे पक्की राय आपके इंजीनियर लोग ही दे सकेंगे। ऑलराइट, तो मेरी एडवाइस ये है कि कल आप किसी भी टाइम मेरे यहाँ आने का कष्ट कर रहे, मैं और मेरे सेक्रेटरी मौजूद रहेंगे, और खास साहब, कैप्टन रूबी, मिस्टर टेम्पेस्ट एंड गवर्नमेंट इंजीनियर भी आएंगे। आप मॉडल और कागज लेकर आइए, तो कुछ सोचा जा सकता है। इफ यू अलाउ, I can call the superintendent of government's arm factory.
अच्छी बात होगी, मैं आने को तैयार हूँ। आप वक्त ठीक करके मुझे इत्तला कर दीजिए।
Alright, let's keep it in the night.
जी, अच्छी बात है। तो आप दोपहर को किसी को भेज दें जो ये मॉडल और बाकी के कागज ले जावे, क्योंकि वहाँ मौजूद सभी आदमी इन चीजों को पहले से देख लें तो ठीक रहेगा।
Alright. मिस्टर कां साहब, कल आप इन चीजों को पंडित जी के यहाँ से मेरे घर पर भेजने का सब इंतजाम कर दीजिए।
जो हुकुम सरकार, कहा और मुलाकात खत्म हो गई। छोटे लाट साहब और वालिद अली खां को गोपाल शंकर बंगले के फाटक तक छोड़ आए, और जब उनकी मोटर चली गई तो दोबारा सोचते हुए अपनी लेबोरेटरी में लौट आए। दोपहर का वक्त था। पंडित गोपाल शंकर आज सुबह से ही अपनी लेबोरेटरी में व्यस्त थे, और इसी कारण उन्होंने भोजन भी वहीं किया था, और अभी अभी आकर आराम कुर्सी पर बैठे थे। सामने टेबल पर कई अखबार पड़े थे, जिनमें से एक अखबार उन्होंने उठाया। समाचारों पर नजर डालते हुए उनकी निगाह अचानक एक अखबार की हेडिंग पर पड़ी जो ये था, सिकंदराबाद छावनी में धड़ाका, मैगजीन में आग, 50 सिपाहियों की मौत, कारण अज्ञात। दक्षिण हैदराबाद शहर के पास सिकंदराबाद की छावनी में कल यकायक एक बहुत बड़ा धड़ाका होने से आग लग गई है, जिससे छावनी तथा मैगजीन का बहुत बड़ा अंश उड़ गया है और बहुत से सिपाही भी साथ साथ मारे गए हैं। घायलों की संख्या कई सौ बताई जाती है। धड़ाके का कारण अज्ञात है। गोपाल शंकर ने समाचार को पढ़ा और अखबार रख कर कुछ सोचने लगे। कुछ देर बाद उनके मुंह से निकला, मालूम होता है रक्तमंडल की कार्रवाई शुरू हो गई है। ये उन्हीं आदमियों की करतूत मालूम होती है। मृत्यु किरण के बमों की बदौलत ऐसी आग तो कहीं भी बात बात में लगाई जा सकती है। अगर इन दुष्टों को अभी नहीं रोका गया तो थोड़े दिनों में ये सब न जाने क्या क्या कर डालेंगे। इसी समय टेबल पर रखे फोन की घंटी बजी। गोपाल शंकर कुर्सी से उठकर आगे झुके और फोन कान से लगा लिया। किसी ने पूछा, क्या आप पंडित गोपाल शंकर साहब हैं? गोपाल शंकर ने कहा, हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं हूँ, वाहिद अली खान। सलाम। आज शाम की मीटिंग के लिए आप तैयार तो हैं ना? क्यों, क्या कोई गड़बड़ी है? हाँ, अरे जी नहीं नहीं, बस कुछ नहीं, यूं ही पूछा। मैंने इसलिए दरियाफ्त किया कि उस मशीन और कागजों को लेने के लिए अपने आदमी को भेजूं या नहीं। जी हाँ भेज दीजिए, मगर आदमी विश्वासी हो। वे चीजें अगर हाथ से निकल गईं तो दुश्मनों का मुकाबला करना और भी मुश्किल हो जाएगा। तार के जवाब आया, इस बात को मैं बखूबी समझता हूँ। वो लोग मेरे खास आदमी हैं, आप तैयारी करके रखिए, वो लोग कुछ ही देर में आपके यहाँ पहुंच जाएंगे। आवाज बंद हो गई और गोपाल शंकर ने फोन रख दिया। इसके बाद वे उठे और अपनी लेबोरेटरी में चले गए, जहां उन्होंने मृत्यु किरण का मॉडल और उससे संबंधी सब कागजात और अपने कुछ नोट्स भी एक लकड़ी के मजबूत बक्से में बंद कर रखे थे। वो लेबोरेटरी से निकले, मगर तभी कुछ और खास बात उनके ख्याल में आई और वो दोबारा अंदर चले गए और दरवाजा भीतर से बंद करके कुछ करने लगे। लगभग आधे घंटे के बाद जब वे बाहर आए तो अपने बैठक वाले कमरे में जाकर कुछ लिखने लगे। इस समय बाहर बरसाती में एक मोटर की आवाज सुनाई दी। नौकर ने आकर कहा, सरकार, दो आदमी आए हैं जो अपने को खां बहादुर वाहिद अली खां साहब का आदमी बताते हैं। उनके साथ चार कांस्टेबल भी हैं और ये चिट्ठी लाए हैं और कहते हैं कि ये चिट्ठी लाट साहब के यहाँ जाएगी तो आपको दे दी जाए। गोपाल शंकर ने चिट्ठी खोल कर पढ़ी। सिर्फ इतना ही लिखा था, आदमी भेजता हूँ, मॉडल और कागज भेज दीजिए, वाहिद अली खां। उन्होंने अपने नौकर से कहा, उन दोनों आदमियों को तो बुलाओ। थोड़ी देर बाद दो आदमियों ने उनके कमरे में कदम रखा, जिन्होंने गोपाल शंकर को बड़े अदब से सलाम किया और खड़े हो गए। गोपाल शंकर ने पूछा, तुम लोगों को खास साहब ने भेजा है? जी हाँ। गोपाल शंकर ने फिर पूछा, जो चीज लेने आए हो कुछ मालूम है वो क्या चीज है? एक ने जवाब दिया, जी मालूम तो नहीं है, मगर सुना है कि बड़ी कीमती चीज है, इसीलिए हिफाजत के लिए कुछ कांस्टेबल भी साथ भेजे हैं। उसे लेके कहाँ जाओगे? खां साहब के घर ना? जी हाँ बिल्कुल। जवाब सुनकर गोपाल शंकर ने एक तेज निगाह उन पर डाली, मगर तुरंत ही हटा ली और बोले, अच्छा तुम लोग बाहर चलो, मैं वो चीज भेजता हूँ, मगर देखना बहुत ही होशियारी से लेकर जाना, क्योंकि बड़ी ही कीमती चीज है, अगर खो गई तो तुम लोग बड़ी आफत में पड़ जाओगे।
अरे आप बिल्कुल बेखतर रहें, उस चीज पर जरा भी आंच ना आने पावेगी। कहते हुए दोनों ने सलाम किया और बाहर चले गए। गोपाल शंकर ने अपने विश्वासी नौकर मुरारी को बुलाया और उसे ताली देकर कहा, लेबोरेटरीज में जो बड़े टेबल पर लाल रंग का बक्सा रखा है वो लाकर इन लोगों को दे दो, और ये जो मैं चिट्ठी लिख रहा हूँ इसे भी ले जाकर उन्हें ही दे देना।
बहुत अच्छा, कहकर मुरारी चला गया और थोड़ी देर बाद लौटा।
इस बीच गोपाल शंकर ने चिट्ठी खत्म कर ली, जिसे एक सादे लिफाफे में बंद करके मुहर लगा दी और देकर कहा, ये चिट्ठी भी दे देना और कह देना कि जिसने तुम्हें भेजा है उसे दे दे। नौकर जाने लगा तो वो बोले,
अरे सुनो, चिट्ठी और बक्स देकर तुम फिर से जरा मेरे पास आओ। थोड़ी देर बाद मोटर की आवाज आई और उसी समय उनका नौकर भी वहां लौट आया। गोपाल शंकर ने पूछा, क्या गए वो लोग?
उसने जवाब में कहा, जी हाँ, बस अभी अभी चले गए।
गोपाल शंकर ने उसे इशारे से नजदीक बुलाया और कान में कहा,
तुम अपनी शक्ल कुछ बदल लो और मोटरसाइकिल पर चढ़कर उनका पीछा करो, देखो वो लोग कहाँ जाते हैं।
मगर सुनो, काफी पीछे रहना कि उन्हें पता ना लगे।
मुरारी, जो हुकुम, ऐसा कहकर चला गया और कुछ देर बाद रवाना हो गया।
इन लोगों को गए मुश्किल से 15 मिनट गुजरे होंगे कि बाहर पुनः किसी मोटर की आवाज आई। मोटर बरसाती में आकर रुकी और उस पर से कई आदमी उतर कर बरामदे में आए। वाहिद अली खां की आवाज सुनकर इससे पहले कि नौकर बाहर जाता, वो स्वयं ही बाहर निकल आए। वाहिद अली खां और शहर के कोतवाल कई सिपाहियों के साथ खड़े हुए थे। मामूली साहब सलामत करने के बाद वाहिद अली खां ने कहा,
मैंने सोचा कि आदमियों के जरिए चीजें मंगाने से अच्छा है कि खतरा हो जाएगा, मैं खुद ही मॉडल लेने आ गया।
गोपाल शंकर ने सुना और ताज्जुब से कहा,
हैं? क्या आप वो मॉडल लेने आए हैं?
जी हाँ, मगर क्यों, आपको ताज्जुब किस लिए हुआ?
इसलिए कि अभी थोड़ी देर हुई आपके आदमी आकर मुझसे सारी चीजें ले गए।
वाहिद अली खान ये सुनते ही चौंक पड़े और बोले, पंडित जी आप क्या कह रहे हैं, मैंने तो किसी को नहीं भेजा था।
ये तो बड़े ताज्जुब की बात कर रहे हैं आप, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, आपकी चिट्ठी लेकर कुछ पुलिस कांस्टेबल के साथ दो आदमी आए थे और सारी चीजें ले गए।
वाहिद अली खां के चेहरे का रंग उड़ गया और वो कांपती हुई आवाज में बोले,
नहीं, मैंने तो कोई खत नहीं भेजा था, मालूम होता है आपको धोखा हुआ।
वाहिद अली की घबराहट देखकर गोपाल शंकर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो हंसकर बोले,
मुझे तो शायद धोखा नहीं हुआ, मगर आप अपनी चिट्ठी पहले देख लीजिए।
कहकर उन्होंने सभी को बैठाया और कमरे से जाकर वो खत ले आए जो उन दो आदमियों ने उन्हें दिया था। लिफाफे से चिट्ठी निकालकर वाहिद अली खां के हाथ में रखी और कहा,
लीजिए, देखिए, आपकी ही लिखावट और आप ही के दस्तखत है ना।
चिट्ठी का मजमून पढ़कर वाहिद अली खां के माथे पर पसीना आ गया। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा,
हरूफ तो हूबहू मेरे ही जैसा है
और दस्तखत भी वैसे ही हैं जैसा मैं करता हूँ, मगर मैं कसम खाकर कहता हूँ पंडित जी की यह चिट्ठी मैंने नहीं लिखी, अफसोस दुश्मन बड़ी चालाकी खेल गए।
वाहिद अली खां ने सिर झुका लिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगे। गोपाल शंकर ने यह देखकर कहा,
खां साहब, अगर आपकी ये चिट्ठी पाकर मैंने वो चीजें उन लोगों के हवाले कर दी तो बताइए फिर मेरी क्या गलती है।
जी बेशक आपकी कोई गलती नहीं है, मगर मैं गरीब तो बेमौत मारा गया, लाट साहब के कान में जब ये बात पहुंचेगी तो मेरे बारे में न जाने वो क्या सोचेंगे, मालूम नहीं मेरी नौकरी भी रहेगी आ जाएगी।
वाहिद अली खां माथे पर हाथ रखकर बैठ गए और उनके साथी भी अफसोस करते हुए उन्हें घेर कर खड़े हो गए। कमरे में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद गोपाल शंकर ने कहा,
खां साहब, अब आपको मालूम हो गया कि आपके दुश्मन कितने निडर और साहसी और भयानक आदमी हैं और उनकी पहुंच कहां कहां तक है।
आगरे के बाहर शहर से लगभग 2 कोस निकल जाने के बाद आम की एक घनी बाड़ी मिलती है जो कई बीघे तक फैली हुई है और जिसके एक तरफ तो सड़क है मगर दूसरी तरफ सांप की तरह बल खाती हुई जमुना बह रही है। ये बाड़ी इतनी घनी और गुंजान है कि दोपहर के समय भी इसमें धूप का नामो निशान नहीं होता और ये बहुत ही ठंडा और निर्जन स्थान है। कई जगहें तो ऐसी भी हैं जहां छोटी मोटी झाड़ियों ने घेर कर एक कुंज सा बना रखा है जिसमें अक्सर आदमी छिपकर बैठते हैं और किसी को ज़रा भी पता नहीं लगता। इसी तरह के एक कुंज में एक नौजवान टहलता हुआ दिखा जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष रही होगी। गोरा रंग, लंबा कद, चौड़ा माथा, सीधी नाक और मजबूत कलाइयाँ उसे किसी ऊंचे खानदान का होनहार बता रहे हैं। उसके माथे पर हल्के रंग का एक साफा और पोशाक इस तरह की जैसे किसी ऊंचे दर्जे के अंग्रेजी फौजी अफसर की होती है। अपने सुनने वालों को ज़्यादा तरद्दुद में न डालकर मैं बता देना चाहती हूँ कि ये उनके पूर्व परिचित और भयानक चार के मुखिया राणा नगेंद्र नरसिंह हैं। नगेंद्र नरसिंह घबराहट के साथ इधर उधर टहल रहे थे। उनके चेहरे से परेशानी और बेचैनी जाहिर हो रही थी और बार बार अपनी कलाई घड़ी देखने से ये भी प्रकट होता था कि वो किसी जल्दी में हैं। उनके मन में तरह तरह की बातें घूम रही थीं, जिनका पता उनके टूटे फूटे शब्दों से बखूबी लगता था। जो कभी अनजाने में उनके मुंह से निकल पड़ता, अफसोस, कमबख्त गोपाल शंकर सब चौपट करके चला गया। अगर मृत्युकरण का भेद सरकार को लग गया तो वो भी वैसी मशीनें बना डालेंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बम बनाने से मशीन का बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर ये चीजें वापस ना मिली तो पता नहीं क्या होगा। नगेंद्र नरसिंह ने दोबारा घड़ी देखी और झाड़ी के बाहर निकलकर उस तरफ देखने लगे जिधर से इस बाड़ी के कोने को छूती हुई सड़क की तरफ थी। अचानक उनके कानों में तेजी से आती हुई मोटर का शब्द पड़ा, जिसे सुनते ही वो एकदम से चैतन्य हो गए और गौर से देखने लगे। कुछ देर बाद उन्हें लाल रंग की एक बड़ी सी मोटर अपनी तरफ आती दिखाई पड़ी। मोटर देखते ही नगेंद्र नरसिंह के चेहरे पर आशा की किरण झलक गई और वो सड़क की तरफ बढ़े। तर यकायक रुक गई। दो आदमी उनमें से उतरे और एक बख्स उठाकर उनकी तरफ आए। नगेंद्र नरसिंह के चेहरे पर यह देखते ही खुशी की झलक दौड़ गई। उन्होंने जेब से सीटी निकाली और किसी खास ढंग से एक इशारे में सीटी बजाई। सुनते ही वे लोग इनकी तरफ घूमे और बात ही बात में उनके पास पहुंच गए। नगेंद्र नरसिंह को देखकर इन दोनों ने सलाम किया और बक्सा जमीन पर रख दिया। नगेंद्र जी ने पूछा, क्या चीजें मिल गई? इनमें से एक ने जवाब दिया, जी हाँ, इसी बक्स में है। नगेंद्र नरसिंह ने खुश होकर कहा, एक आदमी को ये औजार लेकर आओ और इसे खोलो और दूसरा जाकर ड्राइवर से कहो कि मोटर गाड़ी को भीतर ले आए। इसके बाद गाड़ी का रंग बदल डालो मिलकर, चलो। एक आदमी हथौड़ी और रुखानी लेकर बक्से खोलने लगा और दूसरे ने जाकर मोटर को बाड़ी के अंदर लाने के लिए कहा। वो आ गई तो कई आदमियों ने मिलकर रंग के डब्बे और पेंट ब्रश से लाल रंग की गाड़ी पर खाकी रंग चढ़ाना शुरू कर दिया। काम इतनी तेजी से हो रहा था कि लगभग 15 ही मिनट में समूची मोटर का लाल रंग बदलकर खाकी में हो गया। कोई उसे देखकर ये नहीं कह सकता था कि ये वही मोटर है जो आधे घंटे पहले पंडित गोपाल शंकर के बंगले की बरसाती में खड़ी थी। हथौड़ी और रुखानी की मदद से शीघ्र ही वो बक्सा खोल डाला गया। उतावली के मारे नगेंद्र नरसिंह ने जल्दी ही वो रद्दी के कागज हटाने शुरू किए जिससे बक्सा ऊपर से ढका था। जब वो सब हट गए तो भीतर साफ कपड़े में लपेटी हुई एक चीज रखी दिखाई दी। दोनों ने मिलकर उसे बाहर निकाला और जल्द जल्द वहां से कपड़ा हटाया। मगर ये क्या, मृत्यु किरण पैदा करने वाले यंत्र की जगह ये क्या चीज निकल पड़ी? लगभग हाथ भर के लंबे और इससे कुछ कम ऊंचे सफेद मिट्टी का बना हुआ एक सुंदर गधा उस कपड़े में लिपटा हुआ था। देखकर नगेंद्र नरसिंह की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने कड़ी निगाह से उस आदमी की तरफ देखा और कहा, यही चीज लाने गए थे तुम? आदमी कांप गया और डरती आवाज में बोला, हुजूर, ये बक्सा पंडित गोपाल शंकर ने मुझे दिया था। मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम इसके भीतर क्या है। मैं तो यही समझता था कि मॉडल लिए जा रहा हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। ये चिट्ठी भी उन्होंने दी है और कहा है कि जिसने तुम्हें भेजा है उसे दे देना, शायद इसके पढ़ने से आपको कुछ मालूम हो। गुस्से में कांपते हुए नगेंद्र नरसिंह ने वो लिफाफा लिया। लिफाफे पर किसी का नाम या पता नहीं लिखा था, मगर जोड़ पर मुहर जरूर की हुई थी। बेचैनी से नगेंद्र नरसिंह ने लिफाफा फाड़ डाला। भीतर एक कागज निकला जिस पर लिखा था, जो लोग विद्रोह और विप्लव से देश को गड्ढे में ढकेल देना चाहते हैं और ये नहीं सोच पाते कि ऐसा करने का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक फल क्या होगा, उनकी बुद्धि को सहायता देने के लिए मैं ये उपहार भेज रहा हूं, गोपाल शंकर। चिट्ठी पढ़कर नगेंद्र सिंह का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने जोर की लात उस गधे पर मारी कि वो चूर चूर हो गया। चिट्ठी को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और गुस्से से दांव पेच खाते हुए मोटर की तरफ बढ़े। डर से कांपता हुआ वो आदमी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी ही देर बाद वो खाकी मोटर एक तरफ को तेजी से रवाना हो गई। न जाने कब से एक आदमी पेड़ों की आड़ में छिपा हुआ ये सब दृश्य देख रहा था। उन लोगों के जाते ही वो आम की बाड़ी से बाहर आया। बाड़ी से दूर सड़क के किनारे ही एक ढोंके की आड़ में एक मोटरसाइकिल रखी हुई थी, जिसे उसने उठा लिया और सड़क पर ला सवार हो तेजी से शहर की तरफ रवाना हो गया। बताना नहीं होगा कि ये गोपाल शंकर का विश्वासी नौकर मुरारी था, जिसे उन्होंने उस मोटर का पीछा करने को भेजा था। मगर ये मोटरसाइकिल कैसी है जिसमें इंजन की आवाज तक नहीं होती? यकायक गोपाल शंकर हंस पड़े। वाहिद अली की बेचैनी और घबराहट देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, खान साहब, आप इतना बेचैन मत होइए। आपकी कोई चीज नहीं गई है, सब सुरक्षित है। खान साहब पर से मानो मनोबोझ उतर गया हो। वो खुश होकर बोले, हाँ सचमुच, क्या वो मॉडल और कागजात आपके पास अभी भी मौजूद हैं? गोपाल शंकर ने कहा, अरे जी हाँ, मुझे उन आदमियों की बातों पर कुछ शक हो गया था, जिससे मैंने असल चीजें उन लोगों के हवाले न करके कुछ दूसरी चीजें उन्हें दे दी हैं, जिन्हें जब वे लोग देखेंगे तो खुश जरूर होंगे। वाहिद अली खां के चेहरे से अफसोस और रंज का गम एकदम दूर हो गया। वे खुशी खुशी बोले, वाह पंडित जी वाह, आपने तो कमाल कर दिया। बेशक आपकी जो तारीफ मैं सुना करता था बिल्कुल वाजिब थी। अगर आपने उन शैतानों के फेर में पड़कर वो चीजें दे दी होती तो फिर गजब हो जाता। गोपाल शंकर बोले, बस ईश्वर की ही कृपा थी कि मुझे समय पर बात समझ आ गई, वरना मुश्किल तो जरूर हो जाती। खैर, अब आप उन चीजों को ले जाकर लाट साहब तक पहुंचाइए, मैं ठीक समय पर आ जाऊंगा। ये कहकर गोपाल शंकर लेबोरेटरी में गए और वापस आकर काठ का बक्सा खान साहब को थमाते हुए बोले, ये लीजिए, अब अपनी ये धरोहर संभालिए। अब अगर आपके हाथ से गुम हो गई तो फिर आप ही जिम्मेदार होंगे। वाहिद अली बोले, आप खातिर जमा रखिए, अब ये चीजें कहीं नहीं जा सकती। वो बक्स मोटर पर रख दिया गया और सब लोग गोपाल शंकर से विदा हुए। उसी समय मुरारी भी मोटरसाइकिल पर आ मौजूद हुआ। आंख के इशारे से गोपाल शंकर ने उसे कमरे में जाने के लिए कहा और जब इन लोगों की मोटर रवाना हो गई तो खुद भी वो भीतर चले गए। मुरारी ने सब हाल खुलासा कह सुनाया। जो हुलिया उसने बताया उससे गोपाल शंकर समझ गए कि स्वयं राणा नगेंद्र नरसिंह ही इस मॉडल को वापस लेने आए हैं। इससे उन्हें कुछ चिंता भी हुई, क्योंकि मन ही मन वो नगेंद्र नरसिंह की चालाकी, होशियारी और हिम्मत का लोहा मानते थे। पर जब संदूक के अंदर से गधा पाने पर उमड़ने वाले उनके गुस्से का हाल सुना तो खिलखिला कर हंस पड़े। मुरारी से उन्होंने और भी कई सवाल किए और तब उसे विदा किया। घड़ी की तरफ देखा तो 3 नहीं बजा था। छोटे लाट साहब के यहां जाने में अभी देरी थी। वो दोबारा अपनी लेबोरेटरीज में चले गए और दरवाजा बंद करके कुछ करने लगे। आगरे शहर के उस बाहरी हिस्से में जिधर सरकारी अफसरों के बंगले थे, वहां एक आलीशान इमारत भी थी जिसमें इस प्रांत के छोटे लाट साहब यहां आने पर ठहरते थे। एक बड़ी मोटर तेजी से चली आ रही थी। इस मोटर में पीछे की तरफ शहर के कोतवाल और डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट कमाल हुसैन और उनके बगल में प्रांत के खुफिया विभाग के सबसे बड़े अफसर वाहिद अली खां साहब बैठे थे और आगे की तरफ ड्राइवर के अलावा 2 हथियारबंद पुलिस वाले भी थे। वाहिद अली खां और कमाल हुसैन के बीच में लकड़ी का एक मजबूत बक्स रखा हुआ था, जिस पर वाहिद अली खां का एक हाथ इस तरह रखा था मानो बड़ी कीमती चीज हो। मोटर तेजी से लाट साहब की कोठी की तरफ जा रही थी, जो यहां से बहुत दूर नहीं थी। इनकी मोटर के आगे एक खाकी रंग की दूसरी मोटर जा रही थी, जिसमें कई आदमी बैठे थे। रंग ढंग और पोशाक से ये फौजी अफसर मालूम होते थे, मगर किसी तरह के हथियार जाहिरा इनके पास नहीं दिखाई देते थे। पीछे की तरफ वाली सीट पर बैठे एक नौजवान के हाथ में एक छोटी सी दूरबीन थी, जिससे वो पीठ वाली खिड़की की राह से पीछे का हाल देख सकता था। यकायक उसने अपने साथियों को इशारा करके कहा, देखो वो क्या वाहिद अली की मोटर है? उसने पीछे देखा और तब कहा, जी हाँ यही है।
ड्राइवर को इशारा किया गया और मोटर की चाल कम हो गई। पीछे वाली मोटर धीरे धीरे पास आने लगी और कुछ ही देर में दोनों मोटरों के बीच का फासला 10 गज का रह गया। जिस स्थान पर इस समय ये दोनों मोटरें थीं वो बड़ा निराला था। दोनों तरफ बड़े बड़े बागीचों की चार दीवारी के सिवाय किसी तरह के मकान न दिखाई पड़ते थे और ना ही ढलती दोपहर की गर्मी में कोई मुसाफिर इस सड़क पर दिखता था।
यकायक एक आदमी ने झुक कर नीचे काठ का एक छोटा बक्सा उठाया और उसमें से शीशे का एक गोला बाहर निकाला, मगर उसी समय उस नौजवान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ठहरो, अभी इसकी जरूरत नहीं है, ये जगह निराली है, फिर ऐसा मौका शायद ना मिले। नौजवान ने कहा, तो क्या तुम इन सभी को मोटर सहित उड़ा देना चाहते हो? ऐसा करने से वो मॉडल और कागजात भी तो नष्ट हो जाएंगे। वो आदमी बोला, दुश्मन के हाथ पड़ जाने से उनका नष्ट हो जाना ही अच्छा है। फिर भी अगर आपके सामने कोई तरकीब है तो कहिए। नौजवान ने कहा, हाँ, मुझे एक बात सूझी है, बम रख दो और मेरी बात सुनो। कौन थे वो नौजवान और क्या थी वो बात? आगे क्या हुआ इस पूरे मृत्यु किरण के बक्से का हाल, जानने के लिए सुनिए अगला भाग सिर्फ गाथा पर।